नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मीका नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और राज्य। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों और प्रियों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन श्रोता मित्रों का जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन करके परमेश्वर की उन आशीषों को जिसे उन्होंने प्राप्त किया है पत्र के माध्यम से और फोन के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन श्रोता मित्रों का भी जिन्होंने अपने प्रार्थना निवेदन हम तक पहुंचाए हैं। मुझे आशा है कि उन्हें परमेश्वर ने अवश्य ही आशीष दिया है। मेरे मित्रों, आज जब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं तो इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें ताकि आज के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हम सब से फिर से बातचीत करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके पवित्र चरणों तले बैठकर आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। जबकि हम इस समय दूर दराज में हैं, एक दूसरे को नहीं देख सकते, परंतु हम धन्यवादित हैं कि आपने हमें यह रेडियो दिया है ताकि इसके माध्यम से हम आपके वचन का अध्ययन एक साथ बैठकर कर सकते हैं। जब हम मीका नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब वे आपके वचन में से सुनते हैं तो आपका वचन उनके कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन के हर एक प्रकार की खामियों को, त्रुटियों को, बुराइयों को उन्हें दिखाने पाए ताकि वे समझ सके, जान सके कि उनका जीवन क्या है और वे जानने पाए कि आप उनसे क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उनका जीवन बदल जाए, वे बुराइयों को छोड़कर आपकी बातों को मान लें। पिताजी, इस घड़ी हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार हैं, निराश और परेशान है, चिंता और तनाव में है, किसी न किसी रूप से वे व्याकुल हैं। आप उनके जीवन से बातचीत करें, उन्हें शांति और छुटकारा दें कि वे जानने पाएं कि आपके द्वारा हर एक बातों का हल है। हाँ प्रभु, आज के वचन से हम सबों को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, मीका ने जब दंड की भविष्यवाणी की तब इसराइली उलझन में पड़कर उससे कहने लगे कि वे व्यवस्था के अनुसार मंदिर में सब अनुष्ठान तो पूरे कर रहे थे, इससे अधिक क्या परमेश्वर उनसे हजारों मेढ़े और तेल की नदियां चाहता है या उनके बच्चों की बलि चाहता है। मीका प्रत्युत्तर में उनसे कहता है कि परमेश्वर जो चाहता है वह यह है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण इसराइल अधर्मी था। जी हाँ, वहां कुछ ईश्वर भक्त जन थे जो परमेश्वर के आदेशानुसार चल रहे थे, अपना जीवन बिता रहे थे। वे परमेश्वर के आने वाले दंड की भविष्यवाणी को भी मानते थे। ऐसी परिस्थिति में आगे मीका कहता है, मीका नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, 6 अध्याय के 10 पद में, क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा एपा घृणित नहीं है? लिखा है दुष्टता से पाया हुआ धन, उनके अन्याय से संचय किया हुआ धन। आज भी बहुत से लोग अपने लिए दुष्टता से धन कमाते हैं, परंतु दुखद बात तो यही है कि वे अपने जीवन में उस धन का भोग या उस धन का लाभ नहीं उठा पाते हैं और उनके बच्चे, पोते, परपोते उस धन का दुरुपयोग करते हैं और उनके मेहनत का, दुष्टता का कोई भी आदर नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी धन दुष्टता से जमा किए जाते हैं वे ऐसे ही चले जाते हैं, उसका कोई भी मोल नहीं होता है। मीका नबी की पुस्तक 6 अध्याय के 11 पद में आगे लिखा है, क्या मैं कपट का तराजू और घट बढ़ के बटकरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूं? वे परमेश्वर के मंदिर में यथारीति अनुष्ठान पूर्ति करते थे, इस कारण उनका कहना था कि वे न्याय के काम करते थे और कृपा से प्रीति रखते थे, परंतु सप्ताह में वे क्या करते थे? परमेश्वर कहता है, क्या मैं कपट का तराजू और घट बढ़ का बटकरा थैली में लेकर पवित्र ठहर सकता हूं? व्यापारी लोग चोर बाजारी कर रहे थे, लोगों को ठग रहे थे, अतः परमेश्वर कहता है कि घट बढ़ के बटकरों की थैली। वे पूर्ण रूप से दुष्ट थे, लालची थे, लोभी थे, ठग थे, परंतु स्वयं को वे धर्मी कहते थे, क्योंकि उनके बटकरे, उनके तराजू कभी भी न्यायिक रीति से सही नहीं पाए जाते थे और इसी कारण से उन्हें कहा गया है कि वे लालची और लोभी थे, ठग थे। मेरे मित्रों, आज भी हमारे जीवन में, हमारे समाज में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सबसे अधिक धर्म और पुण्य के काम करते हैं, परंतु उनके जीवन को आप निकटता से देखें तो आप पाएंगे कि उनके जीवन में बुराइयां हैं, दुष्टता है। यदि आप धर्म के काम करते हैं तो ये होना चाहिए कि आपके अंदर से धर्म की बातें, प्रेम की बातें निकलती हो, परंतु ऐसा नहीं होता है। मीका 6 अध्याय के 12 पद में कहता है, यहां के धनवान लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं और यहां के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं और उनके मुंह से छल की बातें निकलती हैं। ध्यान दीजिए, धनवान जन उपद्रव के दोषी थे, वे झूठे थे, वे धोखेबाज थे, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। क्या यह आज का परिदृश्य नहीं है? क्या आज आप लोगों को नहीं देखते हैं जो इसी प्रकार के काम करते हैं? आज किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। मीका के युग में भी यही दशा थी, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं था। उनके दंड का एक कारण यह भी था। मेरे प्रियो, आज हम दंड पाने की स्थिति में हैं। हमारी समृद्धि में हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। परमेश्वर ने इस्राएल को दंड दिया जबकि वे उसकी चुनी हुई प्रजा थी, तो क्या परमेश्वर हमें दंड नहीं दे सकता है? क्या हम अपने पाप पर पाप करते रहें और वह चुपचाप बैठ करके देखता रहेगा? जी नहीं, वह न्यायी परमेश्वर है। वह समय का इंतजार करता है, हमें अवसर देता है। वह अपनी चुनी हुई प्रजा को दंड दे सकता है तो वह मुझे और आपको भी दंड दे सकता है। मीका नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूं और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूं। परमेश्वर के कहने का अर्थ है कि जब तक तुम्हारा दंड पूरा ना हो जाए तब तक तुम्हें हर एक बात की घटी होगी। मेरे प्रियो, आज जो व्यक्ति चोरी करता है, हत्या करता है, दूसरों को लूटता है, वह मारा मारा फिरता है, हमेशा उसके जीवन में एक भय होता है, एक डर होता है, आजादी से नहीं जी सकता, लोगों के बीच में नहीं आ सकता, यद्यपि लोग नहीं जानते हैं कि वह चोर है या हत्यारा है, फिर भी उसके अंदर में एक भय है और यह भय परमेश्वर का है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसे पहचान ले, पकड़ लें, और यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी वह शांति का जीवन नहीं जी सकता है। यहां पर कहा गया है कि जब तक तुम्हारा दंड पूरा ना हो जाए तब तक तुम्हें हर एक बात की घटी होगी। जी हां, यही बात हमारे जीवन में भी घटित होती है। मीका 6 अध्याय उसके 14 पद में आगे लिखा है, तू खाएगा परंतु तृप्त ना होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा, और तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा परंतु न बचा सकेगा, और जो कुछ तू बचा भी ले उसको मैं तलवार चलाकर लुटवा दूंगा। ध्यान दीजिए, यहां पर हम कहें दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है कि अब तक उन्होंने जिन वस्तुओं का आनंद लिया वे अब उन्हें उपलब्ध न होंगी, उन्हें हर बात की घटी होगी, अकाल पड़ेगा। अपने धन को सुरक्षित रखने से कोई भी लाभ नहीं होगा, बैरी सब कुछ लूट लेंगे। मीका 6 अध्याय 15 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तू बोएगा परंतु लवेगा नहीं, तू जैतून का तेल निकालेगा परंतु लगाने न पाएगा, और दाख रौंदेगा परंतु दाख मधु पीने न पाएगा। बैरी उन्हें बंदी बनाकर अश्शूर देश में ले जाएंगे। परमेश्वर शनय शनय उन्हें दंड देगा जिससे कि उन्हें उसके निकट आने का अवसर मिले। मेरे मित्रों, अगले अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर उन्हें किसी भी समय क्षमा कर सकता था, परंतु आवश्यक था कि वे परमेश्वर के निकट आते। परमेश्वर की ओर फिरना आवश्यक है, अन्यथा वह दंड देगा। इससे पहले कि आप दंड पाएं, आप परमेश्वर की ओर फिर जाएं, तो वह आपको क्षमा कर सकता है। इसराइल की धार्मिकता ऊपरी दिखावा था, परंतु उनका मन परमेश्वर से दूर था। आज भी बहुत से लोग हैं जो ऊपरी दिखावा करते हैं, परंतु उनका मन परमेश्वर से बहुत दूर होता है। उनके व्यवहार में विश्वासघात था, उनके जीवन में अशुद्धता थी, वे उपद्रवी थे, झूठे थे और धोखेबाज थे। परमेश्वर पाप करने वालों को दंड देगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वह उसे दंड देगा। हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण पाते हैं जो परमेश्वर के भक्त थे, जो उसके निकट थे, लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें भी दंड दिया, यहां तक कि दाऊद को भी उसने दंड दिया। मीका नबी की पुस्तक 6 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि वे ओमरी की विधियों पर और आहाब के घराने के सब कामों पर चलते हैं, और तुम उनकी युक्तियों के अनुसार चलते हो, इसलिए मैं तुझे उजाड़ दूंगा और इस नगर के रहने वालों पर ताली बजवाऊंगा, और तुम मेरी प्रजा की नाम धराई सहोगे। इस पद को पहली बार पढ़ने वाला सोचेगा, ओमरी कौन है, आहाब कौन है। अतः मेरा सुझाव यह है कि पुराने नियम के इतिहास को समकालीन भविष्यवाणियों के साथ में पढ़ें। उदाहरण के लिए मीका की पुस्तक को उत्तरी राज्य के राजा आहाब और रानी इजेबेल तथा दक्षिणी राज्य यहूदा के राजा हिजकिया के इतिहास के साथ पढ़ना होगा, जिससे कि आपके सामने संपूर्ण परिदृश्य प्रकट हो जाए। अतः हम इस पद को पहले राजाओं में व्यक्त ओमरी के इतिहास के साथ पढ़ें, जो उत्तरी राज्य का सर्वाधिक दुष्ट राजा था। वह जिमरी और तिबनी के बाद सिंहासन पर बैठा था। पहला राजा 6 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, और उसने शेमेर से शोमरोन पहाड़ को 2 किकार चांदी में मोल लेकर उस पर एक नगर बसाया और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर शोमरोन रखा। यह नगर आज तक सामरिया कहलाता है। ओमरी द्वारा निर्मित इस नगर के खंडहर आज भी हैं। ओमरी के मरणोपरांत अहाब सिंहासन पर बैठा, जिसके विषय में पहला राजा की पुस्तक 16 अध्याय उसके 28 और 30 पद में लिखा है, ओमरी अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र अहाब उसके स्थान पर राज्य करने लगा, और ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह कार्य किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसके कुकर्मों का कारण उसकी पत्नी थी। पहले राजा की पुस्तक 16 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, उसने तो नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। मेरे मित्रों, आहाब और इजेबेल ने बाल देवता की उपासना को इसराइल का धर्म बना दिया था, और यही कारण था कि परमेश्वर उन्हें दंड देना चाहता था। यहां पर लिखा है कि वे ओमरी की विधियों पर और आहाब के घराने के सब कामों पर चलते थे। परमेश्वर की विधियों पर चलने की अपेक्षा वे ओमरी और आहाब के मार्गों पर चलते थे। उन्होंने परमेश्वर के वचनों पर चलने की अपेक्षा इन राजाओं के मार्गदर्शन पर चले, और 200 वर्ष बाद मीका के युग में भी उनके राज का प्रभाव प्रकट था। यदि किसी देश को समृद्ध होना है तो उसे ईश्वर भक्त होना है, परंतु आज अनैतिकता का बोलबाला है। परमेश्वर देश में व्याप्त अनैतिकता का उत्तरदायी अगुओं को ठहराता है जो उस देश को राज्य को चलाते हैं। मीका परमेश्वर की राजनीति को दर्शाता है। आज एक वृहद जागृति की आवश्यकता है। जी हां, जब तक जागृति नहीं आएगी लोगों के मन और विचार में परमेश्वर के प्रति, वे अंधेरे में ही बढ़ते जाएंगे। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि अध्याय 6 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 7 से बनाए रखेंगे। इस अध्याय का विषय है, परमेश्वर क्या है और क्या करता है, इस कारण उनके सब पाप क्षमा होंगे, अंतिम प्रार्थना, परमेश्वर का उत्तर और तब स्तुति गान। परमेश्वर क्या है और क्या करता है, इस कारण उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। मेरे मित्रों, इस अध्याय के प्रथम 7 पदों में मीका कहता है कि इसराइल से शिकायत करने में परमेश्वर सर्वथा सही है। दोष और दोष का औचित्य मीका के हृदय को स्पर्श करता है। उन पर आने वाला दंड उसे कंपित कर देता है, उसे प्रेरित करता है। अतः इस अध्याय के प्रथम भाग में दुखों की अभिव्यक्ति है, कष्टों की गाथा, हाय की पुकार और उच्चारित विषाद का गीत है। तो आइए हम मीका नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें। यहां पर लिखा हुआ है, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूं जो धूप काल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। यहां मीका की पहुंच व्यक्तिगत है। वह कहता है, हाय मुझ पर। उस पर भी यर्मिया की नाई परमेश्वर के इस संदेश का गहरा प्रभाव पड़ा था जो उसने इसराइल को सुनाया। वह बहुत ही अधिक दुखी था। जी हां, उसे भविष्यवाणी करके प्रसन्नता नहीं हुई थी। आज की परिस्थिति देखकर मेरे मुंह से भी मीका के समान हाय निकलती है, हाय मुझ पर। लिखा है, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूं जो धूप काल के फल तोड़ने पर जा रही दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीर की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई भी गुच्छा नहीं रहा। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा, आपको स्मरण रखना भी है कि धर्मशास्त्र में दाखलता इसराइल राष्ट्र का प्रतीक है। मीका का समकालीन यशाया इस पर अधिक प्रकाश डालता है, वरन इसका प्रतिपादन ही उसके द्वारा किए गए हैं। देखें यशाया नबी की पुस्तक 5 अध्याय में हम पाते हैं कि इसका प्रतिपादन ही उसने किया था। उसी ने इसराइल को दाखलता कहा था। मीका ने अपने राष्ट्र को देखा तो कहा, मुझे तो पक्की अंजूरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा भी नहीं रहा। वे फल उत्पन्न नहीं कर रहे थे। आज यदि परमेश्वर आपके पास आए और आपके जीवन में उन अच्छे अच्छे कामों को, उन अच्छे अच्छे फलों को देखना चाहे, तो क्या वह आपके जीवन में उन फलों को देखेगा? क्या वह उसे पाएगा? प्रेम, नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, क्या वह इन बातों को आप में पाएगा? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के फल यही हैं, और हर एक विश्वासी के जीवन में इन फलों का होना अवश्य है। अब मीका एक एक बात को स्पष्ट करता है। मीका नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। ध्यान दीजिए, आज हमारे देश में सड़कों पर चलना सुरक्षित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि भले मनुष्य नहीं रहे, हमारे देश में अब भी भले मनुष्यों की कमी नहीं है। इसराइल में भी धर्मी जन थे। मीका के कहने का अर्थ है कि भले मनुष्य अल्प संख्या में थे, और वह कहता है कि भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं। मेरे मित्रों, क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर उस भक्त के रूप में आपको देखता है जिसे वह ढूंढ रहा है? आज निश्चय ही हमारे देश में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में भक्त लोगों की कमी है। आज हम जहां भी जाते हैं दुष्टता अधिक दिखती है, परंतु परमेश्वर का भय, प्रेम, नम्रता, दीनता हमें देखने को नहीं मिलता है। इस्राएलियों के समय में, मीका के युग में और आज के युग में क्या अंतर है? क्या आज हम उसी प्रकार का जीवन जीना पसंद करते हैं कि हम दुष्टता में बने रहें और धर्मी लोग नष्ट होते जाएं, या हम धर्मियों को उत्पन्न करें, बनाएं, ताकि हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे गांव और परिवार में परमेश्वर की शांति बनी रहे। मेरे मित्रों, आज हमारे लिए यह अति आवश्यक है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें। दंड देने का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर हमें नाश करना चाहता है, परंतु हमें आगाह करता है, हमें चेतावनी देता है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें, सत्यता को ग्रहण करें और अपने जीवन को उसके निकटता में बिताएं। आइए आज के इस वचन के प्रकाशन में हम अपने आप को जांचें और आज एक सही निर्णय अपने जीवन के लिए लें कि हम प्रभु के प्रति अपना जीवन बिताएंगे। मित्रों, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त हुआ। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आपके निर्णय पर प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।